अध्याय 6 बीज बोने के अन्य उपकरण। बीज बोने के काम और बीज से पौधे की वृद्धि से परिवार और स्कूल में कीमती पाठ सिखाया जा सकता है। बच्चों और युवाओं को दिव्य एजेंसियों के कामकाज को प्राकृतिक चीजों में पहचानने के लिए सीखने दे और वे विश्वास अनदेखी लाभों से काबू करने में सक्षम होंगे, जैसे कि वे अपने महान परिवार की इच्छा में ईश्वर की अद्भुत काम को समझते हैं और हम उनके साथ कैसे सहयोगी करते हैं। उन्हें ईश्वर में अधिक विश्वास होगा और अपने स्वयं के दैनिक जीवन में अपनी शक्ति का अधिक एहसास होगा। ईश्वर ने बीज की रचना की, जैसे कि उसने अपने वचन से पृथ्वी का निर्माण किया। अपने शब्द से उन्होंने इसे बढ़ाने और गुणा करने की शक्ति दी। उन्होंने कहा, पृथ्वी की घास जड़ी बूटी देने वाले बीज और फल के पेड़ को अपनी तरह से फल देने दे, जिसका बीज अपने आप में पृथ्वी पर है, और ऐसा ही था। और ईश्वर ने देखा कि यह अच्छा था। उत्पत्ति 1 आयत 11-12। यह वह शब्द है जो अभी भी बीज को बढ़ने का कारण बनता है। प्रत्येक बीज जो सूरज की रोशनी में अपना हरा ब्लेड भेजता है, वह उस शब्द की आश्चर्य काम करने वाली शक्ति की घोषणा करता है जिसे उसके द्वारा बोला गया था। उसने कहा और हो गया, जिन्होंने आज्ञा दी और वो हो गया। भजन संहिता 33 आयत 9। मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, हमें इस दिन हमारी रोज की रोटी दे, और फूलों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया, यदि ईश्वर मैदान की घास को क्रिक्र कैसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा। मत्ती 6 आयत 11-30। मसीह लगातार इस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए और इस आश्वासन बनाने के लिए काम कर रहा है। भोजन करने और कपड़े पहनने के लिए आदमी के नौकर के रूप लगातार एक अदृश्य शक्ति काम करती है। कई एजेंसियों हमारे ईश्वर को बीज बनाने के लिए काम करती है। जाहिर तौर पर एक जीवित पौधे को फेंक दिया जाता है और वह फसल को सही करने के लिए उचित अनुपात में आपूर्ति करता है। भजनकार के खूबसूरत शब्दों में, तू पृथ्वी पर जा और उसे सींच, तू उसे बहुत समृद्ध करता है। ईश्वर की नदी पानी से भरी है जब आप उसमें मकई डालते हैं। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज को आशीष देता है। अपने भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। भौतिक संसार ईश्वर के नियंत्रण में है। प्रकृति के नियमों का पालन प्रकृति द्वारा किया जाता है। सब कुछ सृष्टिकर्ता की इच्छा से बोलता है और कार्य करता है। बादल और धूप, ओस और वर्षा, हवा और तूफान, सभी ईश्वर की देखरेख में है और उनकी आज्ञा के प्रति अंतर्निहित आज्ञाकारिता। यह परमेश्वर के कानून का पालन करने के लिए है कि अनाज का टुकड़ा जमीन के माध्यम से फूट जाता है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। मरकुस 4 आयत 28। ये अपने उचित मौसम में विकसित होते हैं क्योंकि वे अपने काम का विरोध नहीं करते हैं। और क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य ईश्वर की छवि के कारण और वाणी से संपन्न हो, अकेले अपने उपहारों के प्रति उदासीन हो और अपनी पत्नी के प्रति अवज्ञाकारी हो? हमारी दुनिया में भ्रम पैदा करने वाले तर्कशील प्राणी, हर चीज में जो मनुष्य के भरण पोषण के लिए जाता है, उसे दैवीय और मानवीय प्रयासों की सहमति के रूप में देखा जाता है। जब तक मानव हाथ आरी की बुवाओं में अपना हिस्सा का काम नहीं करता, तब तक कटाई नहीं हो सकता। लेकिन एजेंसियों के बिना ईश्वर और बारिश, ओस और बादल देने में प्रदान करते हैं, कोई वृद्धि नहीं होगी। इस प्रकार यह अध्ययन और विज्ञान के हर विभाग में, हर व्यवसाय में है। इस प्रकार ये आध्यात्मिक चीजों में है, चरित्र के निर्माण में और मसीही काम की हर पंक्ति में। हमारे पास कार्य करने के लिए एक हिस्सा है, लेकिन हमारे पास एकजुट होने की शक्ति होनी चाहिए या हमारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे।
जब भी मनुष्य कुछ भी हासिल करता है, चाहे आध्यात्मिक या लौकिक रेखाओं में, उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने निर्माता के सहयोग से ऐसा करता है। हमें महसूस करने के लिए बहुत आवश्यक है। ईश्वर पर अपनी निर्भरता का एहसास करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बहुत अधिक आत्मविश्वास मुख्य रूप से रखा गया है। मानव आविष्कारों पर बहुत अधिक निर्भरता है, उस शक्ति पर बहुत कम भरोसा है जो ईश्वर देने के लिए तैयार है। हम ईश्वर के साथ मिलकर मजदूर हैं। पहला कुरिन्थियों 3:9। निसंदेहीनता वह हिस्सा है जिसे मानव एजेंट निर्वाह करता है, लेकिन अगर वो मसीह को दिव्यता के साथ जुड़ा है तो मसीह के बल पर सारी चीजें कर सकता है। बीज से पौधे का क्रमिक विकास बाल प्रशिक्षण में एक वस्तु पाठ है। पहले अंकुर, फिर बाल, और उसके बाद बाल में मकई है। जिसने इस दृष्टांत में छोटा बीज बना, उसे इसके गुण दिए और इसके विकास को नियंत्रित करने वाले कानूनों को अपनाया, और जिन सच्चाइयों को दृष्टांत दर्शाता है वे अपने जीवन में एक जीवित वास्तविकता बन गए थे। अपनी भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति दोनों में उन्होंने पौधे द्वारा चित्रित विकास के दिव्य आदेश का पालन किया, जैसा कि वो सभी युवाओं को करना चाहते हैं। हालांकि वो महिमा का महामहिम था, वो बैतलहम में एक बच्चा गया और कुछ समय के लिए अपनी मां की देखभाल में असहाय शिशु का प्रतिनिधित्व किया। बच्चे में उन्होंने एक आज्ञाकारी बच्चे का कार्य किया। उन्होंने एक बच्चे की बुद्धि के साथ बात की और अभिनय किया, न कि किसी बच्चे की क्षमता के अनुसार अपने माता पिता का सम्मान करने और उनकी इच्छाओं को सहायक तरीके से पूरा करने के लिए। लेकिन उनके विकास का प्रत्येक चरण में वे सरल प्राकृतिक अनुग्रह के साथ पाप रहित जीवन के लिए परिपूर्ण थे। पवित्र रिकॉर्ड उनके बचपन के बारे में कहता है, बच्चा बड़ा हो गया और आत्मा में मजबूत हुए, ज्ञान से भर गया और ईश्वर की कृपा उस पर थी। और उनके जवानी में ये दर्ज है, यीशु ने ज्ञान और कद में वर्षद्ध की और ईश्वर मनुष्य के पक्ष में। पहला लूका 2:40-52। माता पिता और शिक्षकों का काम यहां सुनाया, उन्हें युवाओं की प्रवृत्तियों को जानने के लिए इतना प्रयास करना चाहिए कि उनके जीवन के प्रत्येक चरण में वे प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करें, जैसे कि बगीचे में पौधे करते हैं। वे बच्चे सबसे आकर्षक होते हैं जो प्रकर्षतक अप्रभावित होते हैं। उन्हें विशेष नोटिस दिया जाना बुद्धिमानी नहीं है, और उनके सामने अपनी चतुर कहावत दोहराए। घमंड को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, न ही उन्हें महंगे या दिखावटी तरीके से कपड़े पहने चाहिए। इससे उनमें गर्व का अनुभव होता है और उनके साथियों के दिलों में ईर्ष्या जागृत होती। छोटों को बचपन की सादगी में शिक्षित होना चाहिए। वे छोटे सहायक कर्तव्यों और आनंद लेने वालों के साथ संतुष्ट होने के लिए प्रशिक्षित होते हैं और उनके वर्षों के लिए प्राकृतिक अनुभव करते हैं। बचपन के दृष्टांत अंकुर का जवाब है और अंकुर की एक खासियत है। बच्चों को पूर्व परिपक्वता के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन शुरुआती वर्षों की ताजगी और अनुग्रह को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखना चाहिए। छोटे बच्चे मसीही हो सकते हैं, उनके वर्षों के अनुसार एक अनुभव हो सकता है। ये सब ईश्वर उनसे उम्मीद करता है। उन्हें आध्यात्मिक चीजों में शिक्षित होने की आवश्यकता है, और माता पिता ने उन्हें हर वो फायदा दिया है जो वे मसीह के चरित्र के अनुकरण के बाद पात्र बना सकते हैं। प्रकृति में ईश्वर के नियमों में प्रभाव निश्चितता के कारण होता है। कटाई गवाही देगी कि बुआई क्या हुई है। सुस्त काम करने वाले की निंदा उसके काम से होती है, फसल उसके खिलाफ गवाह है। इसलिए आध्यात्मिक बातों में प्रत्येक कार्यकर्ता की ईमानदारी उसके काम के परिणामों से प्रभावित होती है। उनके काम का चरित्र, चाहे वो मेहनती हो या सुस्त, फसल से पता चलता है। यह इस प्रकार है कि अनंत काल के लिए उसकी नियति तय है। बोया गया हर बीज अपनी तरह की फसल पैदा करता है। तो मानव जीवन में हम सभी को करुणा, सहानुभूति और प्रेम के बीज बोने की जरूरत है, क्योंकि हम जो बोते हैं वही काटेंगे। स्वार्थ, आत्मप्रेम, आत्मसम्मान, आत्मयोग का हर कार्य फसल के तरह सामने लाएगा। वह जो स्वयं के लिए जीता है वह मांस, और उस मांस के लिए बो रहा है जो वह भ्रष्टाचार करेगा। ईश्वर मनुष्य को नष्ट नहीं करता, जो नष्ट हुआ है वह सब नष्ट हो जाएगा। हर कोई जो अंतरात्मा की निंदा करता है अविश्वास के बीज बो रहा है और ये एक निश्चित फसल पैदा करेगी। परमेश्वर की ओर से पहली चेतावनी को ठुकराकर पुराने बुजुर्गों के फेरों ने अविश्वास के बीज बो दिए और वह संयम तक पहुंच गया। परमेश्वर ने उसे अविश्वास करने के लिए मजबूर नहीं किया। अविश्वास का बीज जो उसने बोया था वह अपनी तरह की फसल पैदा करता है। इस प्रकार प्रतिरोध तक तब जारी रहा जब तक कि उन्होंने ठंडे मृत रूप में अपने पहले जन्म के अपने घर में और अपने राज्य में सभी परिवारों में पैदा हुए। जब तक कि समुद्र का पानी बंद नहीं हो जाता तब तक वह अपनी तबाह भूमि पर नजर रखता था, अपने घोड़ों और अपने रथों और युद्ध के अपने लोगों पर। उनका इतिहास शब्दों के सत्य का एक भयावह चित्रण है कि जो भी एक आदमी बोता है वह भी छीन लेगा। गलातियों 6:7। क्या पुरुषों को इस बात का एहसास था और वे सावधान हो जाते थे कि वे क्या देखते हैं? जैसा कि बोया गया बीज एक फसल पैदा करता है और ये बदले में बोया जाता है, फसल को गुणा किया जाता है। दूसरों के संबंध में ये कानून सही है। हर कार्य हर शब्द के बीज है जो फल देगा। हर काम के लिए विचारशील दयालुता, आज्ञाकारिता या आत्म इनकार के कारण दूसरों में खुद को पुनः उत्पन्न करेगा और अभी भी दूसरों में उनके माध्यम से, तो ईर्ष्या, द्वेष या विघटन का हर कार्य एक ऐसा बीज है जो कड़वाहट की जड़ में पैदा होगा। इब्रानियों 12:15। जिससे कई अपवित्र हो जाएगी और इस प्रकार बहुत जहर कितना बड़ा होगा। अच्छाई और बुराई की बुआई का समय और अनंत काल के लिए होती है। आध्यात्मिक और लौकिक दोनों तरह की चीजों में उदारता बीज बोने के पाठ में सिखाई जाती है। प्रभु कहते हैं, धन्य है तुम जो सभी जल के किनारे बोते हो। यशायाह 32:20। ये मैं कहता हूं, वह जो संयम से बोता है वह भी संयम से काटेगा और जो बोवनी करता है वह भी बेशर्मी से काटेगा। 2 कुरिन्थियों 9:6। सभी जल के किनारे बोने का अर्थ है ईश्वर का कारण या मानवता के कारण हमारी सहायता की मांग की जाती है। इससे गरीबी दूर नहीं होगी। वह जो भरपूर प्रतिज्ञा करता है वह भी भरपूर रूप से प्राप्त करेगा। बोने वाले ने उसके बीज को दूर फेंक कर गुणा किया, इसलिए ये उन लोगों के साथ है जो परमेश्वर के उपहारों को वितरित करने में विश्वास योग्य है। प्रदान करने से वे अपना आशीर्वाद बढ़ाते हैं। ईश्वर ने उन्हें एक पर्याप्त क्षमता का वादा किया है जो वे दे सकते हैं। 2 और तुम्हें दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभारता हुआ गोद में डालेंगे। लूका 6:38। और इससे अधिक बुवाई और कटाई में लपेटा हुआ है। जैसे कि हम ईश्वर के अस्थाई आशीर्वाद वितरित करते हैं, हमारे प्यार और सहानुभूति के प्रमाण लेने वाले में आभार और ईश्वर के प्रति आभार जगाते हैं। अध्यात्मिक सत्य के बीज प्राप्त करने के लिए हृदय की मिट्टी तैयार की जाती है और जो बोने वाले को बीज देगा वह बीज को अंकुरित करेगा और अनंत जीवन तक फल देगा। अनाज को मिट्टी में डालने से मसीह हमारे छुटकारे के लिए स्वयं के बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। गेहूं के एक मकई को छोड़कर जमीन में गिर जाते हैं। वे कहते हैं ये अकेला रहता है, लेकिन अगर ये मर जाता है तो ये बहुत फल लाता है। यूहन्ना 12:24। तो मसीह की मृत्यु के फलस्वरूप परमेश्वर के राज्य के फल होगा। वनस्पति राज्य के कानून के अनुसार जीवन उसकी मृत्यु का परिणाम होगा और सभी जो मसीह के साथ श्रमिकों के रूप में फल लाएंगे उन्हें पहले जमीन पर गिरना और मरना होगा। जीवन के दुनिया की जरूरत के ताने बाने में ढाला जाना चाहिए। आत्मप्रेम स्वार्थ नाश होना चाहिए, लेकिन आत्म बलिदान का कानून आत्म संरक्षण का कानून है। जमीन में दफन बीज फल पैदा करता है और बदले में ये लगाया जाता है। फसल को कई गुना किया जाता है। पति ने अय्याशी करके अपना अनाज बचा लिया, इसलिए मानव जीवन में जीना है। जिप्स जीवन को संरक्षित किया जाएगा। वह जीवन ईश्वर और मनुष्य की सेवा में स्वतंत्रता से दिया गया है। जो मसीह के लिए इस दुनिया में अपने जीवन का बलिदान करते हैं वे इसे जीवन के लिए शाश्वत रखेंगे।
बीज नए जीवन में वसंत के लिए मर जाता है और इसमें पुनरुत्थान का पाठ पढ़ाया जाता है। ईश्वर से प्यार करने वाली सभी ऊपर के अदन में फिर से रहेंगे। कब्र में छिपाई गई मानव देह में से ईश्वर ने कहा है, ये भ्रष्टाचार में बोया जाता है, इसे अनाचार में उठाया जाता है, ये बेईमानी में बोया जाता है, इसे महिमा में उठाया जाता है, ये कमजोरी में बोया जाता है, इसे शक्ति में उठाया जाता है। पहला कुरंथियों 15 आयत 42-43। इस तरह के कुछ सबक प्रकृति के जीवित रहने वाले बोने वाले और बीज द्वारा सिखाया जाता है, जैसा कि माता पिता और शिक्षक इन पाठों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। काम के व्यवहार बनाया जाना चाहिए। बच्चों को स्वयं मिट्टी तैयार करने और बीज बोने दें। जब वे काम करते हैं तो माता पिता या शिक्षक वहां बोए गए अच्छे या बुरे बीज के साथ दिल के बगीचे की व्याख्या करते हैं, और जैसा कि बगीचे को सच्चाई के बीज के लिए तैयार किया जाना चाहिए। जैसे ही जमीन में बीज डाला जाता है, वे मसीह की मृत्यु का सबक सिखा सकते हैं, और जैसे ही अंकुर निकलते हैं, वो पुनरुत्थान की सच्चाई का पाठ पढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे बढ़ते हैं, प्राकृतिक और आध्यात्मिक बुआई पत्राचार जारी रखा जाता है। युवाओं को समान तरीके से निर्देश दिया जाना चाहिए। उन्हें मिट्टी तक सिखाई जानी चाहिए। ये अच्छा होगा अगर हर स्कूल में खेती के लिए जमीन हो। ऐसी भूमि को ईश्वर का अपना विद्यालय माना जाता है। प्रकृति की चीजों को पढ़ाना है, जिससे वे आत्मा की संस्कृति के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मिट्टी को छेड़ने में, जमीन को अनुशासित करने और अधीन करने में लगातार सबक सीखा जा सकता है। कोई भी जमीन एक कच्चे टुकड़े पर बसने की कोशिश नहीं करेगा, ये उम्मीद करता है कि एक बार फसल की पैदावार होगी। बीज बोने के लिए मिट्टी को तैयारी का इलाज करने में परिश्रम और दृढ़ता से श्रम लगाना पड़ता है। तो यह मानव हृदय में अध्यात्मिक कार्य है। जो लोग मिट्टी के देर लाभान्वित हो गए, उन्हें अपने दिल में परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वे पवित्र आत्मा के नरम दब्बू प्रभाव से टूटे हुए दिल की परती जमीन को खोज लेंगे। जब तक मिट्टी पर कड़ी मेहनत नहीं की जाती है, तब तक फसल नहीं होगी। इसलिए हृदय की मिट्टी के साथ परमेश्वर की आत्मा को इसे परिष्कृत और अनुशासित करने के लिए काम करना चाहिए, इससे पहले कि वह परमेश्वर की महिमा के लिए फल ला सके। आवेग द्वारा काम करने पर मिट्टी अपने धन का उत्पादन नहीं करेगी। ये विचारशील दैनिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये अक्सर और गहरी जुताई की जानी चाहिए, इस विचार के साथ कि अच्छे बीज बोने से पोषण लेना है। इस प्रकार जो हल चलते और बोते हैं, वे फसल की तैयारी करते हैं। उनकी उम्मीदों के दुखद मलबे के बीच मैदान में किसी को भी खड़े होने की जरूरत नहीं है। प्रभु का आशीर्वाद उन लोगों पर आराम करेगा जो इस प्रकार भूमि पर काम करते हैं, प्रकृति से आध्यात्मिक सबक सीखते हैं। मिट्टी की खेती में कार्यकर्ता को कम ही पता चलता है कि उसके लिए कौन से खजाने खुलेंगे। हालांकि वह उस निर्देश को तुच्छ नहीं समझ सकता है जो वे उन दिमागों से इकट्ठा कर सकता है जिसके पास एक अनुभव है, और इस जानकारी से कि बुद्धिमान पुरुष प्रदान कर सकते हैं, वह खुद के लिए सबक इकट्ठा करता है। ये उनके प्रशिक्षण का किया हिस्सा है। मिट्टी की खेती आत्मा के लिए एक शिखा साबित करेगी। वह जो बीज को वसंत का कारण बनाता है, जो इसे दिन में झुकाता है, जो इसे विकसित करने की शक्ति देता है, हमारे आस्तिवका अधिकारी है, स्वर्ग का राजा, और वह अपने बच्चे की अभी भी अधिक देखभाल और रुचि रखता है। जबकि मानव बोने वाला बीज हमारे सांसारिक जीवन को बनाए रखने के लिए बीज बो रहा है, परमात्मा बोने वाला बीज बोएगा जो आगे जीवन के लिए फल लाएगा।